सभी को अपना महान लक्ष्य याद है। कौन सा महेश बाबू? भाव समान बनने का तो बड़ा भारी है, थोड़ा छोटा बता दो, सदा खुश रहने का, विश्व कल्याण का। बहुत अच्छा। और इधर बहनों का क्या लक्ष्य? महान लक्ष्य बोलो बोलो। हॉस्पिटल वाले सदा हैं आप, जोर से बोलो। बाप समान वो तो बड़ा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, उस पर चर्चाएं बहुत हो भी चुकी हैं। हमारा अपना जीवन भी संसार के लिए आदर्श, हमारी स्थिति संसार के लिए सहारा, हमारे वाइब्रेशंस संसार को दुखों से मुक्त करने वाले। एक बहुत अच्छे महावाक्य के साथ आज चर्चा शुरू करेंगे। बाबा ने कहा, जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। जब तक तुमने सबको दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर नहीं जा सकोगे। किस किस को अच्छी लगी ये बात? ठीक है, बस ठीक है। अच्छी लगने का मेरा प्रश्न का मतलब समझ गए ना सब? अच्छी तो है ही। किसी को बहुत अपीलिंग होती है कोई चीज कि हमें ये महान कार्य करना है, तो अपने को लंबा काल दुखों से मुक्त रखना है। दुख तो संसार में बढ़ता जा रहा है, आप सब भी जानते जाते होंगे। अनेक आत्माओं के संस्कार उन्हें दुखी कर रहे हैं। पाप कर्म जो मनुष्य कर लेता है, जब वो करता है तो सोचता नहीं कि उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। जब वो सामने आते हैं, वो भी आत्माओं को आजकल बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमें सबको मदद भी करनी है, पीछे जो बाबा कह आए, और स्वयं को सुरक्षित भी करना है। आज की मुरली में भी था, तुम इस खेल को साक्षी होकर देखते हो, इसलिए अचल अडोल रहते हो। खेल पूरा हो रहा है, दुखों का तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है, पाप भी बढ़ रहा है। हमें ध्यान देना है, हमारे अपने संस्कार हमारे दुखों का कारण न बन जाएं। कई आत्माओं का सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अपने संस्कारों से ही बहुत दुखी रहते हैं और दोष देते हैं दूसरों को, इनके कारण हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहती। हमें किसी को दोष न देकर अपने संस्कारों को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है। तो एक बहुत अच्छे अभ्यास को करेंगे हम अब आगे के दिनों में, और वो है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। इसमें बाबा की दो बातें प्रैक्टिस में लाएंगे। स्वराज अधिकारी माना हम मालिक हैं, मन के मालिक, बुद्धि के मालिक और संस्कारों के मालिक। दो विशेष बात पर इस बार प्रैक्टिस करनी है। बाबा की मुरलियों में पीछे आ चुका है, मन में वही संकल्प उठे जो हम चाहते हैं, संस्कार वही कार्य करें जो हम चाहते हैं। ऐसा ना हो वो संस्कार काम कर रहे हों जो हम चाहते ही नहीं। ख्याल करना इस बात पर। हमारे मन में वही विचार संकल्प उठ रहे हैं जो हम चाहते हैं, या वो उठ रहे हैं जो हम नहीं चाहते? इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में चलें, कर्मेंद्रियों पर शासन होगा तो क्या फायदा होगा? मुरली में था, वरदान में था कुछ दिन पहले, तो साथियों पर क्या हो जाएगा? साथियों पर किसके साथ दो लोग काम करते हैं, दस करते हैं, सौ करते हैं, जो स्वयं पर शासन करेंगे, कर्मेंद्रियों पर जिनका शासन होगा उनका साथियों पर सहज ही शासन हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहज ही सब साथी उनकी बात मानेंगे, सम्मान देंगे, आज्ञाकारी होंगे, ठीक ठीक चलेंगे। कर्मेंद्रियों पर हमारा शासन हो, संस्कारों पर हमारा शासन हो, सब चेक करेंगे बहुत अच्छी तरह, मेरा कौन सा संस्कार वो है जो नहीं होना चाहिए, चेक करेंगे। कुछ संस्कार निकाल लें जो नहीं होने चाहिए, ताकि सबको चेक करना इजी हो जाए। और कर्मेंद्रियों का कोई भी रस मुझे ये नहीं होना चाहिए, ऐसी आज बहुत अच्छी चेकिंग स्वयं की हो जाए। बोलो, बोलेंगे अब सब? संस्कार जो नहीं होना चाहिए, एक मैं सुना देता हूं छोटी सी बात। किसी में संस्कार होता है बहुत बोलने का, बिना बोले चैन नहीं, अपनी बात एक बार सुनाने के बाद दस बार सुनाएंगे, वो समझते हैं दूसरों को समझ में नहीं आती, दस बार सुनाना पड़ेगा, ऐसा संस्कार बताओ। जल्दी ही मूड ऑफ करने का संस्कार, और बोलो। ज्यादा सोचने का संस्कार, बहस करने का संस्कार, छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार, और बोलो। बहनों की ओर से नहीं पता, दूसरों की गलतियों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने का संस्कार, पीछे वाले बोलो बहने। हाँ, खुद की गलती के लिए हमेशा ही दूसरों पर दोष, दूसरे जिम्मेदार, ये संस्कार। भाई बोले। कमी देखने का संस्कार, दिल शिकस्त होने का, निराश रहने का संस्कार। बोलो। दैहिक दृष्टि का संस्कार, ये बहुत खतरनाक है, बहुत आते हैं ऐसे केस कि हम इससे बहुत परेशान हैं, छोटी बातों में इरिटेट होने का संस्कार, चिड़चिड़े रहने का संस्कार। पीछे वाले भी आवाज से बोल सकते हैं, मैं राइट हूं ये हमेशा ही कहने का संस्कार, यानी अहम। निद्रा नहीं, निंदा, दूसरों की निंदा करने का संस्कार। हाँ ठीक, बहुत हो गए। और भी किसी को ख्याल आता है? इससे चेक करने में इजी होगा कि हमारे अंदर को ये संस्कार हो तो ये संस्कार हमारे नहीं हैं, हमारे संस्कार बहुत डिवाइन हैं, बड़े रॉयल हैं, बड़े सुखदाई हैं, आत्मोन्नति वाले हैं, आत्मा को सुखों से भरपूर करने वाले हैं। बोलो। और भी कुछ? वैभव या व्यक्ति पर आकर्षित होने का संस्कार। किसी में एक संस्कार के केस मेरे पास आजकल बहुत आने लगे हैं, बहुत जल्दी कहीं भी अटैचमेंट हो जाने का संस्कार। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही, असंतुष्ट रहने का संस्कार। कईयों की ऐसी आदत होती है, कुछ भी मिल जाए, सब कुछ कर दो तो भी असंतुष्ट। अनुमान लगाने का संस्कार, इससे भी बहुत लोग दुखी रहते हैं, बात होती नहीं, अनुमान लगा लगा के शायद रात जागते रहते हैं, जैसे उनकी ड्यूटी हो सिक्योरिटी में। और बोलो है? है, ये भी है खाने का संस्कार, छुपा के खाने का, ज्यादा खाने का संस्कार। ठीक है, अब आ जाएं कर्मेंद्रियों के रसों पर। हमें कर्मेंद्रियों के राजा भी बनना है और संस्कार भी वही हो जो हम चाहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें अपने किसी भी गलत संस्कार का पता हो। बहुतों की समस्या ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता, वो अनुमान लगाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि उनका अनुमान सब गलत है। एक संस्कार और होता है बहुतों में, फीलिंग आने का संस्कार, छोटी छोटी बातों में बहुत फील कर देना। ये संस्कार भी खुशी नष्ट करा देता है और आत्मा को कमजोर कर देता है। बाबा का कभी का महावाक्य है, फीलिंग आना माना आधी मृत्यु, भगवान ने कहा आधी मृत्यु। अब कर्मेंद्रियों के रसों की बात पर आ जाएं। बोलो कौन कौन से रस हैं कर्मेंद्रियों के जो हमारे नहीं हैं, स्वराज अधिकारी आत्मा के नहीं हैं, महान आत्माओं के नहीं हैं, उनके नहीं हैं जो संसार के लिए बहुत बड़े काम करने चाहते हैं। बोलो रस, सुनने का रस, हाँ प्रकृति को अलग बोलेंगे, सुनने का रस, देखने का रस, निंदा रस, खाने पीने का, जीभ का रस, माताएं बोलते जाओ, अच्छा पहनने का रस, और अच्छा पहनते हुए भी दूसरों का अच्छा देख के परेशान होने का रस, अपना कितना भी अच्छा पहन लिया हो लेकिन दूसरे का और जरा अच्छा है तो अपना रस खत्म। और रस, सुंदर कहने का रस। और भाई बताओ अब, नहीं कर्मेंद्रियों के रसों की बात कर रहे हैं। जीभ का भी आ गया, कानों का, आंखों का, मुख का, जीभ का, बोलने का रस, बाह्य मुक्ता का, कंप्यूटर का रस। अच्छा कंप्यूटर का रस, ये नए रस हैं भाई, कंप्यूटर का रस, मोबाइल रस, फेसबुक रस, नेट के रस हैं, ये सुना नहीं, शॉपिंग का रस, दूसरों से अपनी महिमा सुनकर रस हैं, घूमने का रस, ये भी ठीक बात है, ठीक है ये भी एक है। तो ये सब रस है, अपने को बार बार देखने का, नहीं ये भी रस होता है, बार बार शीशे के आगे जाते हैं, कहीं बाल सिर पे हो या ना हो कंघा बार बार घुमाएंगे, ये सब रस है। अभी हमें रस कौन सा होना चाहिए? बाप को देखने का रस, बहुत अच्छी बात कही। दूसरा रस, मुरली का रस, बहुत सुंदर। तीसरा रस, सुंदर चिंतन का रस। मैंने एक बोलेंगे हाथ उठा के तो सुनेगा। और बोलो, स्वमान को बार बार अभ्यास करने का रस, बहुत अच्छा। इनमें रस आता है ना, मुरली सुनने में भी रस आता है। बोलो, और सेवा करने का रस, दूसरों को प्रभु से मिलाने का रस, रस होना चाहिए, मिलाना है सबको, किसी को संतुष्ट करने का रस, क्या क्या रस होने चाहिए, तो बहुत रस निकल गए, सेवा रस, ये अच्छे रस हैं, सेवा करने का रस, बाबा के गीतों को सुनने का रस, ये भी बहुत अच्छा। देखो बहुत लोग सुनाते हैं, एक बात सुना दूं फिर आप सुनाना, बहुत लोग सुनाते हैं हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा होता था, थोड़ी अशांति रहती थी, हमने पीस ऑफ माइंड चैनल लगवा लिया, शांति हो गई है, वही टीवी लेकिन उसपे बाबा के विजन्स आते हैं, अच्छी क्लासेज आती हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं सुनते थे इस टीवी चैनल ने बहुतों को बाबा का बना भी दिया, बाबा की ओर अट्रैक्ट करा दिया, तो इससे बहुत अच्छा हो गया ना, तो ये भी रस हुआ, रस बदल गया, वही टीवी देखने का रस, अब वो बच्चों को भी दिखाते हैं ये अच्छा प्रोग्राम है इसको देखो, कौन सा बोला आगे रस, हाँ बोलो, बाबा का संदेश देने का रस, तुम बोलो, छोटा स्टूडेंट बोलता है, मुरली सुनाने का रस, ये किसी ने नहीं बताया था भाई, सबसे छोटी कन्या ने बताया, तुम सुनाती हो क्या मुरली, नहीं सुनाती, वाह, किसने पढ़ाया क्या, पड़ोसी ने, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, तो ये हमारे ईश्वरीय रस हैं, जो हमारी स्थिति को एक रस बनाते हैं, और वो जो भौतिक रस हैं, सांसारिक रस हैं, वो हमें ईश्वरीय रसों से दूर ले चलते हैं। मान लो किसी को जीभ का रस है और अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा होती है उसके कारण, तो सूक्ष्म रूप से ऊपर से बुद्धि योग टूटता जाएगा, वो कितना भी कहें कि हम अच्छा खा पी के अच्छा योग कर लेंगे, होगा नहीं, क्योंकि योग और एकाग्रता का संबंध हमारे त्याग से है, त्याग और वैराग्य से है, हमें बहुत अच्छी एकाग्रता करनी है, एकाग्रता के बिना सुख मिलेगा नहीं, और कुछ अभ्यास बहुत बढ़ा दें आप अपने जीवन में, लक्ष्य बना लें, सभी को लक्ष्य बनाना है कि समस्या आ जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, अचानक कुछ हो जाए, हमें वही याद आए, ऐसा ना हो ठीक समय पर हमें वो चीजें भूल जाएं, वही याद आए, ऐसी कुछ चीजें निश्चित कर लें, जैसे कहीं भी कुछ हो गया तो हम बाबा का तुरंत आह्वान कर दें, मेरा बाबा, इतना ही कहेंगे, बाबा उपस्थित, बाबा ने वचन दे दिया है ना, प्यार से, प्यार पहले से ही हम बाबा से रखेंगे, उस टाइम तो प्यार की बात नहीं होती, उस टाइम भावना की बात भी नहीं होती, लेकिन पहले से ही भावनात्मक रूप से और अति प्यार से हम बाबा से जुड़े रहेंगे, बस आदत पड़ी होगी बाबा, और बाबा उपस्थित, और बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। मुझे ऐसे अनेक लोग अपने अच्छे अनुभव सुनाते रहते हैं, कैसे लोगों ने उन्हें तंत्र मंत्र के द्वारा विनष्ट करने की कोशिश की, कुमारों को भी कुमारियों को भी, और कैसे बाबा कहते हैं, उन्होंने देखा इनके चारों ओर तो कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है, हमारा तंत्र मंत्र बेकार है इनके सामने, नमस्कार करके अपने घर चले गए। ऐसी बातें और क्या याद कर लें, बहुत प्रैक्टिस कर लें, बहुत प्रैक्टिस हो जाए हमारी देह से न्यारा होने की, ताकि हम राइट टाइम पर सेकंड में देह से डिटैच हो जाएं। मुरली पढ़ सकते हैं आप, 69 की मुरलियां हैं, अष्ट रतन वही बनेंगे जो सेकंड में देह भान से न्यारे हो जाएंगे, ऐसा दीदी हो जाएंगे, तो बहुत लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है। तीसरी एक प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छी तरह, जिम्मेदार बाबा है, इसको बसा दें अपने अंदर, समा दें अपने चित्त में, जिम्मेदार बाबा है। चौथी बात, समा दें, भगवान ने कह दिया है मैं हूं, तुम चिंता न करो, बेफिकर बादशाह बन जाओ, भगवान गारंटी ले रहा है, तुम बेफिकर बादशाह रहो, मैं हूं, ये फकुड़ ले लो, भगवान साथी है। और एक बात ले लें, समय कल्याणकारी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। पक्का कर दें इन बातों को, और इतना पक्का कर दें कि नेचुरल हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी स्मृतियों में घूमने लगे, हमें इसके लिए सोचना ना पड़े, तेजी से ये चीजें घूमे। साथ साथ ये भी ध्यान रखना सभी को, अपना पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाते चलें, ध्यान देना इस बात पर, पाप पहले ही बहुत हैं या नहीं, पाप पहले ही बहुत हैं पूर्व जन्मों के, पुण्य ही हमारी सुरक्षा करेगा। मुझे याद आ गया, बहन जी बैठी हैं, अमर ज्योति बहन, इनकी कहानी याद आ गई मुझे, इनकी मारुति पीछे से ट्रक के नीचे घुस गई और ये बच गए, ऊपर का उड़ गया सारा, और बस वो ऐसा सीन था। इन्होंने मुझे रात को फोन किया, अब याद आ रहा है तो डर लगता है, तब तो निकल गए ना बाबा बाबा करके, बाबा ने बचा दिया, लोग आ गए और मदद कर दी, बाबा की बहुत मदद हो गई, लेकिन वो एक सेकंड का खेल था, ये सारे के सारे खत्म हो जाते। अभी की बात है, किसने बचाया, हाँ, बाबा के साथ पुण्य कर्म। देखो बाबा का अट्रैक्शन भी उधर ही है, जिधर पुण्य बहुत है, जिधर पाप है उधर बाप होता ही नहीं, वो दूर चला जाता है, उसकी मदद मिलती ही नहीं। तो सभी पुण्यों का खाता भी बहुत बढ़ाएंगे अगर हम एक श्रेष्ठ योग की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके चार पिलर बनाएं, वो पिलर नहीं जो हमारे चित्रों में हैं, चार पिलर कौन कौन से बनाएंगे, उससे आगे के, अब एडवांस, चार पिलर सबको याद है ना, योगी के, ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्धन, दैवी गुण, ये चार हैं। अब इसे आगे बनाओ, एक उसमें पिलर होगा पुण्य कर्म, जिसके पुण्य ज्यादा हैं उसका योग सरल होगा, ठीक बात है या नहीं। पाप आत्माएं कितनी भी मेहनत करें, उनका मन भटकता ही रहेगा, बल्कि योग करना टेंशन हो जाएगा उनको, योग ही नहीं लगता, योग ही नहीं लगता। दूसरा पिलर बनाएंगे बहुत अच्छी पवित्रता, विचारों की शुद्धि, शुभ भावनाओं से भरा हुआ चित्त, प्रेम से भरा हुआ चित्त, ये सब प्योरिटी में आता है। तीसरा पिलर बनाएंगे, पर दो और बनाने, श्रेष्ठ स्वमान, स्वमान की सीट पर रहने वाले, बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। अब चौथा पिलर और बताओ, कई निकालो उसमें से एक चुनेंगे, दुआएं और है? साक्षी, निरंकारी, और बताओ, अभी नहीं आया, बोलो, सब भावनाएं प्योरिटी में आ गई, और बोलो, श्रेष्ठ चिंतन, यानी इससे होगा ज्ञान का बल, क्योंकि मन में जितने सुंदर विचार होते हैं, मन उतना ही शांत और एकाग्र होता है। मन खाली है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो हम ये चारों पिलर भी बनाएंगे अपने जीवन में बहुत स्ट्रांगली, और जो पांच चीजें हमने चर्चा की उनको बड़ा नेचुरल करेंगे अपने जीवन में, ताकि हमें अंतिम समय में या विनाश काल में या अचानक कुछ भी आ जाने पर वही याद आए, बाकी कुछ नहीं। शास्त्रों की तरह नहीं, भक्ति की तरह नहीं कि वो अजामिल मरने लगा, उसके लड़के का नाम था नारायण, उन्हें नारायण को पुकारा, ऊपर वाले नारायण ने सोचा मुझे पुकार रहा है, मुक्ति कर दी। ऊपर वाला नारायण इतना समझता नहीं था कि मुझे नहीं अपने को पुकार रहा है, ऐसे नहीं होगा। हमें कैसी कथाएं लिख दी हैं पुराणों में भी, भगवान को इतना पता नहीं कि वो ऊपर से बहेलिया नीचे उतर रहा था, पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ गिर रहा था, शिव ने सोचा मेरी पूजा कर रहा है, ऊपर से उतरा तो सोचा है पत्थर है इस पे पैर रख लूं, शिव ने सोचा है तो पूरा ही चढ़ गया मुझ पे। मैंने कहा शिव ऐसे भोलेनाथ नहीं है, बहुत बुद्धिमान भोलेनाथ है। तो हमें अंत में बहुत अच्छी स्मृति रहे, केवल अंत में नहीं पहले भी। और अंत की बात क्यों बाबा करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसा अभ्यास करो अंत में सिवाय बाप के कुछ भी याद ना आए। क्यों क्यों इतना अंत को महत्व दे रहे बाबा, बोलो। अंतिम स्थिति पे मांस मिलेंगे, विनाश सामने खड़ा है, और बोलो। अंतमते सोगते, और बोलो। पेपर एक सेकंड का होगा, और किसी को याद आता है कुछ? हाँ ठीक बोल रहे आप, बोलो। देखिये ये सब बातें तो ठीक हैं, परंतु अंत में बाबा की याद उसे ही रहेगी जिसने लंबा काल याद किया। क्यों? अंतिम समय ऐसा समय होता है मृत्यु का, आप सोच लो मृत्यु से एक दो दिन पहले या एक दो घंटा पहले, कि मनुष्य को वो सब याद आने लगेगा जो उसने किया है। और सभी के साथ अंत में एक और बात होगी, ये सूक्ष्म बात है, क्योंकि कल्प का अंत होगा, वो होता है हर जीवन का अंत, ये होगा कल्प का अंत। तो अनेक आत्माओं के सामने पूरे जन्म फिल्म की तरह सामने आने लगेंगे, तुमने ये किया है, देखो ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए सजा है। सुना है ना मुरलियम बाबा कहते हैं, जज अनाउंस करता है ना, ये पाप ये सजा, ये गलती ये सजा। तो अंत में क्योंकि कल्प का अंत होगा तो सबके सामने उनकी फिल्म आ जाएगी, और उससे आत्माएं बहुत पीड़ित होंगी, देह छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगी, वो एक एक क्षण बहुत भारी होगा, बहुत भारी। तब वो बाबा को पुकारेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, तब बाबा सुनेगा नहीं, क्योंकि बाबा की अब नहीं सुनी तो बाबा नहीं सुनेगा तब। इसलिए जिनको केवल बाबा याद होगा और जिन्होंने लंबा काल देह से न्यारे होने का अभ्यास किया होगा, वो सब कुछ अपनी फिल्म देखकर भी सेकंड में डिटैच होके बाबा के साथ चल देंगे, और इस अभ्यास के कारण उनके बहुत सारे विकर्म नष्ट भी हो चुके होंगे। और जिनको ये अभ्यास नहीं है, कोई भी चीज उनको याद आ रही है, मान लो किसी ने बहुत सारी ज्वेलरी रखी थी अपने पास और अब समाप्ति का समय आ गया उसको, और उसको याद आ रहा है, अरे मैंने इतना रखा था किसी को भी नहीं दिया, न बाबा के काम में लगाया न किसी और को दिया, अब वो तो गया। तो ये जो संकल्प है क्या करेगा, देह में उलझा देगा, निकलने नहीं देगा, और उस समय देह में उलझना माना अति कष्ट। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया है, ये केस होते रहते हैं और विनाश काल में अनंत होंगे कि बड़ी बिल्डिंग गिर गई, हजारों लोग उसमें दब गए, अभी सबकी मृत्यु नहीं हुई, किसी की मृत्यु 5 दिन के बाद, किसी की 9 दिन के बाद, किसी का हाथ कट गया, सिर फूटा हुआ है, अंदर पड़े हैं अकेले कोठरी में, कोई पूछने वाला नहीं, प्यास लग रही बहुत, पानी नहीं, अब उसे याद आएगा सब। देह वो छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभ्यास नहीं किया। एक एक चीज उसे याद आएगी, मैंने उसको कष्ट दिया था, मैंने उसको सताया था, मैंने उसका धन हड़प लिया था, मैंने उसको बहुत परेशान किया, सब याद आएगा। तो वो जो समय आत्माओं के लिए होगा वो धर्मराजपुरी होगी। ये धर्मराजपुरी ऊपर नहीं, वो कालकोठरी बन जाएगी, वो ऊंची बिल्डिंग जो लोगों ने बड़े प्यार से बनाई थी, 100 मंजिल की 40 मंजिल की, उसमें रहने का सुख लिया था, वही उनके लिए धर्मराजपुरी होगी। क्योंकि एक साथ सबकी मृत्यु नहीं होगी। बड़ी बिल्डिंग गिर गई, बहुत लोग दबेंगे, किसी का हाथ टूटा, टांग टूटा, आंखें फूट गई, सब खून खून हो गया, लेकिन मरेंगे नहीं। उनके पाप उन्हें जल्दी देह छोड़ने नहीं देंगे। ये होगी बहुत बड़ी दुर्गति, उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए हम सबके वाइब्रेशंस, जो आत्माएं स्वयं लंबा काल देह से मुक्त हो गई, देहवान से, विकर्मों के बंधन से मुक्त हो गई, संस्कारों के बंधन से मुक्त हो गई, व्यर्थ संकल्पों के बंधन से मुक्त रही लंबा काल, उनके वाइब्रेशंस इन आत्माओं को देह से मुक्त करेंगे। ये होगी इनके लिए मुक्ति, तभी आत्माएं वापस घर चलेंगी। इसे स्वयं को लंबा काल दुखों से मुक्त भी रखना है और देहभान से डिटैच भी करना है। ऐसा दीदी होने का बहुत अभ्यास, इसके महत्व को सभी बहुत अच्छी तरह समझ लें, केवल समस्याओं में उलझे न रह जाएं, बातों में उलझे न रह जाएं। देख लें हमारा लक्ष्य कितना महान है और जिन बातों में हम उलझे हैं वो कितनी छोटी हैं, सब चेक करेंगे। ठीक है ना ये बात, लक्ष्य कितना महान है, हमें मुक्तिदाता बनना होगा, तभी तो भक्ति में सब इष्ट देव देवियों के आगे लोग जाकर कहेंगे आप मुक्तिदाता हो। क्योंकि मुक्ति देने का काम सभी को एंड में करना है। जिसके पास बहुत अच्छा योग बल होगा, प्योरिटी का बल, पुण्य कर्मों का बल, यज्ञ सेवा का बल और योग अच्छा, तो वो आत्माएं दूसरों को मुक्त करेंगी। जो खुद मुक्त हैं वो दूसरों को मुक्त करेंगी। अब आप सोच लें, जो बात शुरू की थी हमने, कौन संसार को दुखों से मुक्त करने का महान कार्य करेंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा। और जहां विनाश फट से हो जाएगा, एटम बम छूटेंगे, सभी के देह जल जाएंगे और आत्माएं कहां पहुंच जाएंगी, कहां पहुंचेंगी आत्माएं, परम धाम नहीं, पाप बहुत हैं, परम धाम कहां जाएंगी, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूक्ष्म वतन में भी पाप आत्माएं नहीं जा सकेंगी। तो उन्हें हम सबको योग के वाइब्रेशंस देकर ऊपर भेजना होगा, ये बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए जो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे वो संसार की ये महान सेवा करेंगे। इस सेवा की जानकारी संसार में तो किसी को हो भी नहीं सकती ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी कोई सेवा है क्या। और क्या करें ऐसे में, जब बिल्डिंग गिर जाती है लोग मदद करते हैं, निकालो हटाओ भाई, किसी के पास फोन होता है, फोन से बात कर लेता है, मैं हूं जिंदा, ऐसे केस हुए ना। लेकिन ये सब भी नहीं होगा, फोन नहीं चलेंगे तब, कोई सोचे फोन जेब में रखना चाहिए हमेशा, फोन नहीं चलेंगे तब, तब तो एक ही फोन काम करेगा, सीधा कनेक्शन, वॉइसलेस का वायरलेस काम करेगा, बाकी कुछ नहीं काम करेगा। तो जो आत्माएं देह छोड़ के ऊपर भटकेंगी, अंतरिक्ष में इंतजार करेंगी घर जाने का, उन्हें हमें योग के वाइब्रेशंस देकर मुक्ति धाम भेजना होगा, तब हम उन सबके सच्चे अर्थों में पूर्वज हो जाएंगे। करेंगे ये काम, अब बताओ कौन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं सबके हाथ तो देख लिए फट से, योग चाहिए इसके लिए, बहुत अच्छा। स्वयं को मुक्त करना होगा, लिस्ट बना लो अपने पास, व्यर्थ से मुक्त, देहभान से मुक्त, बेकार के संस्कारों से मुक्त, व्यर्थ की बातों से मुक्त, अपने विकर्मों से मुक्त, मुक्त करना होगा। बंधन मुक्ति ये सब बांध रही है ना चीजें, आत्मा को बांध रही हैं। तो सभी अब तो दो ही दिन है बाबा के, लेकिन और आगे तक फिर हम मिलेंगे वैसे ही मुरली के तीसरे दिन, और तब तक बाबा भी मुरली में कुछ ना कुछ कहते ही अभ्यास का। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, और आज की मुरली के आधार से मैं इन कर्मेंद्रियों से काम करा रही हूं। मैंने हाथ ऐसे उठाया तो मैं आत्मा ने हाथ उठाया, आंखों से देखा तो मैं आत्मा ने आंखों से देखा। ये प्रैक्टिस ताकि बहुत ज्यादा देह से डिटैचमेंट होता जाए, और देह से डिटैच होते होते कर्मेंद्रियों के रसों से हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, देह भान से डिटैच, माना सभी बंधनों से डिटैच, मुक्त हो जाते हैं। ये दो अभ्यास स्वमान ले लें, इसी से जोड़ेंगे स्वमान। मैं पूर्वज हूं, मास्टर मुक्ति दाता हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर दुख हरता हूं। बड़े स्वमान हो गए चारों, पूर्वज, मास्टर मुक्ति दाता, मास्टर दुख हरता और विश्व कल्याणकारी। इस फीलिंग को बढ़ाना है बहुत ज्यादा। मैं हूं, मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। आप सबको याद हो बाबा ने पीछे कहा था मुरली में 18 जनवरी को, जब एक अवतार क्रांति ला सकता है, याद है आगे? इतने सारे अगर अवतार श्रेष्ठ कार्य करने लगे तो संसार में कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो लक्ष्य बना ले, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बाबा ने ऊपर से मुझ में शक्तियां भरकर मुझे नीचे भेजा है। एक विजन बनाएंगे, हम बाबा के सामने हैं ऊपर। ये प्रैक्टिस रोज एक दो बार करेंगे, हम ऊपर बाबा के सामने हैं सूक्ष्म लोक में, और बाबा हम में शक्तियां भरकर आदेश दे रहा है, बच्चे जाओ नीचे, वो तुम्हारा देह है उसमें प्रवेश करो, मैं तुम्हें संपूर्ण पवित्र बना रहा हूँ, संपूर्ण रूप से शक्तिशाली, जाओ जग का कल्याण करो, जग को दुखों से मुक्त करो। और हम नीचे आते हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, इससे हमें अपने मान लक्ष्य की स्मृति रहेगी, जो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारा है। तो फिर से वही बात रिपीट कर देते हैं, हमें अपने महान लक्ष्य को भूल नहीं जाना है। छोटी बातें जिनकी कोई वैल्यू नहीं, बातें बहुत छोटी, हमारा लक्ष्य बहुत महान। और ये कार्य करने से हमारे पुण्य कितने जमा होंगे, अनंत पदम गुना। ले चले अपने को सूक्ष्म लोक में, बिल्कुल मग्न हो जाएं और ऊपर देखें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहां चार ओर सफेद प्रकाश,
ॐ शांति
शांति,
ॐ शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा
कहां से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
सूक्ष्म लोक में हूं, यहां चार ओर सफेद प्रकाश, मेरे सामने बाबा बाप दादा, बिल्कुल हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और बोले, बच्चे मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे रहा हूं, संपूर्ण पवित्रता से तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर पवित्रता के फरिश्ते हो। जाओ इस धरा पर, अपने देह में अवतरित होकर संसार के कल्याण का महान कार्य करो। और मैं फरिश्ता उड़ के आ गया नीचे, मैं बंधन मुक्त। ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। और संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं।